ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुपुष्प तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणान्तिके। कल हमने कुछ सनातन धर्म के संबंध में और उसी की कड़ी में हमने कृष्ण कथा आरंभ की थी, जिसमें हमने बतलाया था आंशिक रूप में कृष्ण का जन्म मथुरा में और पूर्ण रूप से गोकुल में हुआ। इसके बाद में गोकुल में कृष्ण ने बहुत सी लीलाओं का किया, बहुत से असुरों को उन्होंने मारा। सबसे पहले अपने जन्म लीला के 4-5 दिन बाद ही उन्होंने पूतना का वध किया, जो कल बतलाया गया, आश्रम महाराज ने बतलाया। उतना माने पवित्र जो नहीं है वो भगवान की आराधना नहीं कर सकता। आजकल लोग शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मांस मछली अंडे गोश्त सभी खाते हैं, इसे हृदय पवित्र होता है, पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने पहले उसको मारा जो पवित्र नहीं है। लोग स्नान नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं होगा, किंतु इससे अधिक है पवित्रता मन के द्वारा किसी के प्रति ईर्षा द्वेष न हो, ये सबसे अधिक पवित्रता है। स्नान करके भी यदि लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, बेईमानी करते हैं, तो वो अपवित्र है। स्नान न भी करे कोई बात नहीं, हृदय पवित्र होना चाहिए, तो भगवान उसके दी हुई चीजों को ग्रहण करते हैं। भगवान सबरी के यहाँ गए, उसके जूठे बेर खाए, उसमें वो प्रसन्न है, उनमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं, जो प्रेम से आरोगा उसी को ही वो ग्रहण करते हैं। प्राणी मात्र ही उनके सेवक हैं। नीच कुल में जन्म लेने से ही आदमी व्यक्ति वो नीच नहीं हो जाता है जब तक कि नीच आचरण न हो, शुद्ध आचरण होना चाहिए जिस कुल में भी उत्पन्न हो। असुर कुल में प्रहलाद पैदा हुए किंतु कैसे पवित्र थे, भगवान उनके लिए निसिंह रूप धारण करके आए, इसलिए पवित्रता आवश्यक है। ये पूतना पहले जन्म में महाराज बलि की कन्या थी, जब वामन देव के रूप में गए देवताओं के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए 3 पग भूमि मांगा, उस समय में उनको देख करके बड़ी सुंदर मूर्ति उनकी देखी, ये मेरा बेटा होता, भगवान ने कहा जो ठीक है मैं तेरा बेटा हूं। और जब उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण करके एक पग से सारी पृथ्वी को और दूसरे पद से स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मलोक तक सबको माप लिया, अब तीसरी कोई जगह नहीं रही, तो उन्होंने अपने को खुद ही दे दिया। जब मैं अपने को आत्मसमर्पण करता हूं, उस समय भी उनको लेकर के नागपाश से बांध दिया। उस समय उनकी वो जो बेटी थी वो बड़ी रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई, यदि हमारा बेटा भी होगा तो इसको मैं विष दे करके मार डालूंगी। ये ठीक है ऐसा भी हो, इसलिए वो पूतना बन करके आई, रक्त का पान करती थी, बच्चों को ऐसे चबा जाते थी चबेना जैसा। भगवान ने कहा जे तुम दुष्ट को अभी मैं ठीक करता। उस वो माता बन करके आई, स्तन में यद्यपि विष था किंतु ओ मेरे प्यारे लाडले बेटे दूध पान करो, इस प्रकार का एक नकली भाव दिखलाने पर भी उसको माता की गति दे दी कृष्ण ने। ऐसे भगवान को छोड़कर के किसका कोई भजन करेगा, ऐसा कोई भी दयालु नहीं। केवल वेश बना करके आई मैया का और विष भी दिया, तो उसके इस आसुरी शरीर को छड़ा करके और उसकी आत्मा को माता जैसी धात्री उचित गति दे दी, माता जैसी गति दे दी गोलोक में। ऐसा कौन दयालु होगा जगत में, इसलिए उनका भजन करना ही चाहिए। जब कृष्ण थोड़े दिन के बाद में और बड़े हुए तो घुटनों पर अपने दरवाजे तक जाते बलदेव जी के साथ, और कोई कुत्ता या आदमी को देख करके फिर बड़े जोर से तीव्र गति से डर करके मानो लौट आते। ऐसी सुंदर सुंदर सब लीलाएं करते। अरे उनको पृथ्वी को उठाने में डर नहीं लगा, निसिंग रूप से हिरण्यकश्यप को मारने में देर नहीं हुई, किंतु एक कुत्ता बिल्ली को देखते ही डर के मारे होटलों को भाग आते हैं और मैया की गोदी में अंचल में छिप जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में जब वो एक महीने के हुए तो कंस ने उनको मारने के लिए एक असुर को भेजा, उसका नाम त्रिणावर, आंधी का रूप धारण करके आया। पुतना तो रूप बना करके गई इसलिए उसको मारा, मैं रूप ही नहीं धारण करूंगी का, और कृष्ण को ऐसे ही मैं उड़ा करके आकाश से पटक दूंगी, इसलिए आंधी का रूप धारण करके आया। यशोदा मैया अपनी गोदी में उसे दूध पिला रही थी, कृष्ण देखा जैसे मेरी मैया को तंग करेगा ये, इसलिए बहुत भारी हो गए लोहे जैसे। यशोदा मैया ने उनको बैठा दिया, असुर ने झट उनको आकाश में लेकर के चला गया। कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया और पकड़ते ही थोड़ा सा दबा दिया, आंखें लाल लाल रसगुल्ले जैसे निकल आई। कृष्ण ने सोचा जो मैं खेल ही कर रहा था, मैं तो चाहता था जो आकाश में उड़ लूं जरा, तो इसके गले को पकड़ लिया तो इसका प्राण निकल गया, लाल लाल आंखें निकलने, तो मैं क्या करूं, इस तरह से वो मरा गया। ये तृणावर्त क्या है, लोग कुछ पढ़ लिख लिया और ऐसी युक्ति निकालते हैं कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, नो गॉड एट ऑल, नास्तिक बन जाते हैं और ऐसी युक्ति देंगे भगवान कोई चीज ही नहीं है, शास्त्र झूठे हैं, माता पिता को सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे वो लोग तो अपने भोग में थे, हम चौपक आए, उनसे उनकी उनसे सेवा करने की क्या जरूरत है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसे नास्तिक लोग तृणावर्त हैं। भगवान उनको मार करके शांति की स्थापना करते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। इसके बाद में एक और असुर आया, शकटासुर। कृष्ण के का जन्मदिन था, मैया रसोई में लगी हुई थी, ब्रजवासी सब पुरुष लोग, स्त्रियां महिलाएं सब आ रही थी, महिलाएं गान कर रही थी ब्रज में। उस समय में एक बहुत बड़ा भारी छकड़ा, छकड़ा माने होता है चार पहियों का गाड़ी, बैलगाड़ी, बहुत लंबी चौड़ी, और उस पर तरह तरह के बर्तन टर्तन घी और सब रखे थे। वो अपनी शक्ति से गाड़ी में प्रवेश कर गया और ऊपर से ऐसा दबाया कि कृष्ण उसके नीचे पलने में झूल रहे थे, कृष्ण को दबा करके चकनाचूर कर देगा। कृष्ण तो मुझे देखेंगे नहीं, कोई भी नहीं देखेगा, और गाड़ी के ऊपर में ऐसा भार दिया जैसे गाड़ी के चक्के एकदम डूब गए, मिट्टी में धस गए, और कृष्ण को वो एकदम दबा करके चकनाचूर कर देगा। तो कृष्ण उस समय खेल रहे थे बच्चों के साथ में, वो खिलते हुए पैरों से थोड़ा सा कहीं स्पर्श हो गया और गाड़ी उलट गई और वह असुर भी मारा गया जिनके स्पर्श मात्र से। ये शक्तासुर लोग क्या हैं जिनका कृष्ण वध करते हैं? गाड़ी के ऊपर में भार लादा जाता है, जिनको विद्या का भार है, जो लोग अद्वैतवादी हैं, नास्तिक हैं, कर्मकांडी हैं, भगवान हमारे कर्मों के वशीभूत हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल देंगे, वो स्वतंत्र कोई नहीं है, कर्म के फल को ही ईश्वर कहते हैं। ऐसे ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोग शकटासुर हैं, कुछ सीख लिया है, कुछ पढ़ भी लिया है सांसारिक चीज, किंतु भगवत भक्ति नहीं है जिनके हृदय में, वो विद्या भार के स्वरूप है, गाड़ी के ऊपर लदी हुई है। भगवान ऐसे गाड़ी को उलाट करके उसका ध्वंस कर देते हैं। विद्वता का तात्पर्य है भगवत भक्ति, विद्या भागवतावधि, विद्या की अवधि कहां तक है सीमा? भागवत तक। क्यों? पढ़ लिख करके जिसको भगवत प्रेम नहीं हुआ गोपियों के समान, उसकी विद्या बेकार की है, वो विद्या नहीं अविद्या है जो संसार में बांध देती है। और विद्या वही सार्थक है जिसके द्वारा कृष्ण के चरणों में अहेतुकी भक्ति होती है, अनुपायनी भक्ति होती है। अनुपायनी माने क्या? विशुद्ध, लगातार ऐसी जो भक्ति होती है भगवान के चरणों में, उसको कहते हैं अहेतुकु, अनुपायनी भक्ति, विशुद्ध भक्ति। तत्पश्चात कृष्ण बड़े हो गए, कृष्ण बड़े हो रहे हैं अब, घिटूरियां से उठ करके कृष्ण और बलदेव चढ़ा पैरों पर चलने लगे और तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। उस समय गोपियां आती हैं, कहते हैं कि एक लड्डू दूंगी, देखें जो कौन कुछ मल्ल युद्ध में कौन जीतता है कौन हारता है, जो जीत जाएगा उसको देंगे। और कृष्ण अभी बलदेव नंगे हैं बिल्कुल, परब्रह्म, और परस्पर में ताल ठोक करके पहलवानों जैसा कुश्ती करते हैं। कभी बलदेव ऐसा मालूम जी अब कृष्ण को पटक दिया नीचे, इतने में कृष्ण ने बलदेव जी ने उनको नीचे कर, इतने में ही कृष्ण इस प्रकार से खेल खेलते हैं और वो लड्डू देती हैं। कभी नंद बाबा, अरे बेटा मेरी जूती लइयो, तो नित्य करते हैं थेई थेई, और जूती को अपने सिर पर लाते हैं। कौन ला रहा है? परब्रह्म, पिता के प्रति भक्ति दिखला रहे हैं, उनकी जूती को सिर पर ला रहे हैं। और बैठने के लिए उस समय पीढ़ा होता था लकड़ी का, टेबल चेयर पर लोग नहीं उस समय खाते थे, पीड़े होते थे पवित्र होकर के रसोई घर में हाथ पैर धो करके जाना होगा, जूती पहन करके नहीं जाना होगा। परम पवित्रता से जहां से आए जैसे तैसे घुस गए, ये नहीं होगा। केवल जूती खोलने से भी नहीं, पैर धो और तब रसोई घर में घुसो। रसोई घर और ठाकुर जी का घर दोनों बराबर। ठाकुर जी के यहां जहां से तैसे आप मत आ जाओ, अब तो कोई व्यवस्था ही नहीं है इसकी। जूता भी ऐसे हाथ से ही खोल लिया, भले ही चमड़ा जाए जिस प्रकार का, और उसी तरह से फूल ले आए और ठाकुर जी को दे दिया, भोग लाया दे दिया, कोई भी जूठा फूटा का कोई विचार नहीं। मैं नहीं जानता कि इन मंदिरों में ठाकुर जी को कैसा भोग लगता है, उनको चावल दाल कच्चा रोटी बनती है या पकी हुई कहीं से आ जाती है या सूखा मेवा टेवा भोग देते हैं, मुझे पता नहीं है कैसा भोग लगता है। यहाँ
दाल रोटी लगाते हैं,
कभी कभी बनता है?
नहीं, रोज
दाल रोटी बनती है। बहुत अच्छा, जरूर बनना चाहिए। जो कुछ खाए पिए ठाकुर जी को भोग दे। कहीं कहीं हमारे कृष्ण के जन्मभूमि है मथुरा में, वहां पर इलायची दाना भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को कभी भी चावल दाल कच्ची रोटी और कढ़ी दाल ये सब नसीब नहीं, दही ये सब नसीब नहीं, इलायची दाना दे दिया बस हो गया। कभी इलायची दाना भी नहीं, आरती कर लिया बस हो गया। ये ठाकुर जी की सेवा नहीं है। पवित्र हो करके घर में जा करके, हृदय पवित्र हो, ये तरह से पवित्र हो और पवित्र होकर के ठाकुर जी के घर में प्रवेश करें। जगन्नाथपुरी में भी नियम ऐसा भी है, जाओगे वहां पर पानी की धारा बहती रहती है, उसमें पैर धो करके भीतर में जाओ, जाने नहीं देंगे, ऐसे कहिए जाओ पानी से पैर धो करके हाथ धो करके जाओ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिर में जब प्रवेश करते थे हाथ और पैर धो करके और दरवाजा में माथा टेक करके तब भीतर में जाते थे मंदिर में, नहीं तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। ये जयपुर से मंगाई हुई मूर्तियां हैं, पत्थर की हैं, ऐसा बोध होगा, ठाकुर जी हैं ऐसा विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए ये सब विधियां थी, आजकल विधियां सब हट रही हैं। अब कृष्ण कुछ बड़े हो करके पिताजी की जूती ला रहे हैं सिर पर, कौन परब्रह्म, रामचंद्र पुरुषोत्तम है, वही कृष्ण ही रामलीला में पुरुषोत्तम है, और इस लीला में पुरुषोत्तम की जरूरत नहीं, वो प्रेम पुरुषोत्तम है, मर्यादा नहीं। मर्यादा को फुटबॉल की तरफ में किक देकर के उड़ा दिया, और प्रेम की मर्यादा है वहां। प्रेम से भिलनी भी दे दे कुछ तो खा लेंगे, प्रेम से उनको कोई भी चीज दे दे ले लेंगे। दुर्योधन ने अपने सोने के भवन में उनको बुलाया और तरह तरह के मेवा उनको दिए। कृष्ण ने कहा जी मुझे तो भूख नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, जिस काम के लिए आया पहले वो काम हो जाए तब पूछ लेंगे, वो काम भी तुमने नहीं किया और भूख हमको है नहीं, तो तुम्हारा कोई भी द्रव्य नहीं ले सकता। और उसी समय उनको भूख लग गई, विदुरानी के घर में गए, केले के छिलके खा लिए बड़े प्रेम से। कैसा लग रहा है, आज तक द्वारकापुरी में बहुत कुछ खाया किंतु ऐसा हमको अच्छा मीठा कोई चीज नहीं लगा। उनको भक्तों का दिया हुआ चीज ही अच्छा लगता है, यदि शुद्ध भक्त हो कैसा भी हो। जगन्नाथपुरी में एक हिंदू का लड़का, वो मुसलमान, उसकी मैया को उन लोगों ने जबरदस्ती कर दी तो वो मुसलमान हो गया, किंतु होने पर भी मैया का आचार विचार पालन करता, जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आसक्त हो गया, रोने लग गए। तो ठाकुर जी मंदिर छोड़ करके और पैदल चल करके दरवाजे पर आकर के उसको दर्शन दिया और जो उसने दिया उसी को खा लिया। उनकी जाति नहीं जाती, हमारी तो जाति चली जाती है, उनकी जाति नहीं जाती। प्रेम के भूखे हैं विशेष करके कृष्ण, प्रेम के अतिरिक्त तो उनको कोई नहीं है। धीरे धीरे और बड़े हो गए। नंद बाबा जी ने कहा वो बैठने की हमारी वो चौकी ले आना, तो पीढ़ा जिसको पहले कहते थे, उठा रहे हैं, उठता नहीं। विश्व ब्रह्मांड को तो उठा लिया, ऐसे ही शेषनाग के रूप में उठा लेते हैं। गिरिराज गोवर्धन को भी एकदम नीचे से उखाड़ करके अपनी कानी उंगली पर रख ली और ये पीढ़ा नहीं उठ रहा, वहां कर रहे हैं। इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। कुछ और बड़े हुए, अब तो सखा उनके बहुत से नंगे धड़ंग उनको मिल गए, और उनके साथ में ये गोप लोग कौन हैं? सखा लोग उनके नित्य परिकर हैं, गोलोक वृंदावन से जगत के लोगों को अपने प्रेम माधुर्य से आकर्षण करके भगवान की भक्ति में लगाने के लिए वो लोग आए। इसलिए छोटे छोटे बच्चे चाहे तो कोटि कोटि ब्रह्मा को शंकर को पैदा कर लेंगे, ऐसे ये हैं, किंतु नहीं करते। क्यों? लीला गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कृष्ण नहीं करते हैं, छोटे से बच्चे बने हुए हैं, एक मक्खी भी नहीं हटा सकते कृष्ण, करवट भी नहीं फेर लगते, तो एक दिन यशोदा मैया ने फिरा दिया। अबोध बनते हैं ठाकुर जी, अभी जैसे हैं ऐसे न रहे, और कुछ मांगने लगे और कहा जी आज रात में 12 बजे हमको पंखा चलाना, कौन करेगा? एक दिन नहीं कोई कर दिया, कोई आएगा ही नहीं, पुजारी भी सेवा नहीं कर सकते, तंग हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हमारी सेवा ले रहे, जैसे इच्छा हो तुम सेवा करो। सेवा में लगाने के लिए इस प्रकार से जड़ प्राय दिख रहे हैं, नहीं तो ये चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जगन्नाथ जी जैसे 56 बार भोग लगता है 56 बार भोग लगता है, हाथ दिन उनका कभी भी सूखता नहीं है, फिर खा लिया, फिर हाथ धुआ, फिर खा लिया, फिर खा, कितने उनके भोग लगते ही रहते हैं, मुश्किल हो जाएगा यहां बड़ी भारी मुश्किल। इसलिए चुपचाप खड़े हैं, जो जैसे है सेवा करो, मैं उसी से संतुष्ट हूं, चुपचाप। तो अब बड़े होने लगे, गोपियां जो वेद की ऋचाएं हैं, मैंने एक दिन बतलाया था ये सब, ये बहुत तपस्या की थी, गोपी हुई है, इसलिए इनकी इच्छा यह है कृष्ण परब्रह्म हमारे घर में आए चोरी करने के लिए, मक्खन चोरी के बहाने आते थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं, मक्खन उनको नहीं चुराना है, किंतु आ रहे हैं किस लिए? दिल चुराने के लिए भक्तों का, इसलिए उनके घर में जाते हैं, टोली बना ली, दाम सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग उज्जवल अर्जुन सुबल मधुमंगल कोकिल भृंग बसंत, कितने उनके हजारों सब सखा है, नंग धड़ंग अभी, केवल करधनी सोने की बंधी हुई है कमर में और कुछ नहीं, और किंकिड़ी है कृष्ण के साथ में हो लिए। और एक सखा को कहा कि देखो तुम्हारी मैया क्या कर रही, सवेरे में भोर बजे में ब्रह्म मुहूर्त में अभी प्रकाश नहीं हुआ है, कहा जी मेरी मैया घर में दधि मंथन कर रही है, तो तुम एक बात करो बछड़े को खोल दो दूध पिए, और जाकर के मैया से कह दो जी मैया बछड़ा दूध पी रहा है, तो वो जब बाहर में जाएगी तो हम सभी घर में घुस जाएंगे और जितना मक्खन टक्खन सब खा करके चले आएंगे। तो उसी के बेटे ने अपनी मैया को जाकर के मैया अरे बछड़ा खुला हुआ दूध पी रहा है, मैया जट छोड़ करके अरे किसने छोड़ दिया, किसने ऐसा किया, और जा करके देखा तो बछड़ा दूध पी रहा था, तो उसको जा करके बांधने में कुछ विलंब हुआ, कृष्ण अपने नंग धड़ंग समाज के साथ में भीतर में घुस गए और मक्खन जितना रखा था ताजा निकला हुआ सब खाया परस्पर, जो बाकी रहा वो बंदरों को इधर उधर करने लगे। तब तक मैया दौड़ करके फिर देखी अरे ये सब घुस गए घर में सब बंदर, तब तक वो निकल गए हंसते हुए, क्यों ऐसा कर रहे, भूख लगती है। यशोदा मैया के घर में कितनी गायें हैं? 9 लाख। श्रीराम के घर में श्रीराम कौन है? कृष्ण कृष्ण राधा जी का भैया और विश्वभानु महाराज का बेटा। उसको 12 लाख गायें नंद बाबा से भी अधिक। उनके घर में खाने की कमी है, जो दूसरों के घरों में जाते हैं मान ले कि इतना सा मक्खन भी ले लिया तो क्या हो गया, कोई परवाह? उस समय दूध और दही की नदियां बहती थी, हम लोगों ने सुना है ने? उस नदी में से थोड़ा सा कोई इतना ले ले तो उसका क्या हो जाता है। किंतु यही तो पर ब्रह्म की मधुर लीलाएं हैं जिसके द्वारा सबको आकर्षण करते हैं। किसी समय एक गोपी ने देखा ये रोज मक्खन खा जाता, अच्छा तो ठीक है आज घर में अंधकार रखूंगी, कोई प्रदीप नहीं रखूंगी, देखे क्या कर, और दरवाजे पर पास में बैठ गई। तो कृष्ण भीतर में घुसे तो उनके अंगों से ही प्रकाश आ रहा है, उसकी मणियां जो कृष्ण की हैं उसी से प्रकाश आ रहा है, उसमें ही उजाला हो गया, जाकर के घुस करके खा पी करके चले आए। ऐसा मत सोचो ये जागतिक मनुष्य की एक लीला है, ऐसा करने से उसे दंड देना है, किंतु परब्रह्म ऐसी लीला कर रहे हैं ये सब लोगों की हृदय चोरी करें। यदि कृष्ण की भक्ति हो गई तो सब जीवन सार्थक है, और कृष्ण की भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार का है। इस चीज को समझना चाहिए, भक्ति हो गई फिर क्या रही बाकी, कृष्ण भी वशीभूत हो जाएंगे। एक समय की बात है, कृष्ण ने देखा जी अब गोपियां सावधान हो रही हैं, उन्होंने नई नई तरह की तरकीबें निकालना आरंभ किया। कृष्ण बच्चों को लेकर के घर में घुसे और गोपी खड़ी थी, उसने पकड़ लिया, अरे मैया ये मुझको पकड़ क्यों लिया, तू मेरे घर में कैसे घुस आया? मैया ये तेरा, तू कहती है ये मेरा बेटा तू है, और मैं अपने घर में आया तो तू कहती है ये हमारे घर में, तुम्हारा घर कौन सा है, ये तो मेरा घर है। बस मुस्कुरा देते, वो भी मुस्कुराने लगती, बस चले जाए। एक दिन कृष्ण ने मक्खन चुराया, इतने में गोपी ने पकड़ लिया पीछे से, उन्होंने कहा जी आज मक्खन चोरी क्यों कर रहा है? तो मक्खन काम है चोरी करना, तो क्या कर रहा है? तो मैं अपना बछड़ा ढूंढ रहा हूं। बछड़ा क्या तुम्हारा इसमें आ गया? हाँ हमारा बछड़ा मेरे साथ में था, वो इसी उसको क्या कहते हैं मटकी में ये कूद गया। तो तुम्हारा बछड़ा मटकी में कूद गया, कहाँ है तुम्हारा बछड़ा? तो उन्होंने हाथ उठाया और उसमें लगा करके उसमें उसके पिताजी ने मार्बल का एक बछड़ा मूर्ति खिलौना दिया था, वो कहा जी देखो ये, और निकाल करके हंसने लगे, अपनी बांह छुड़ा करके भाग गए। कभी कभी सोने का ये कंगन पहने हैं, वहां डुबाया, गोपी ने पकड़ लिया, अजय क्यों तुम चोरी कर रहा था? तो मां चोरी कहां कर रहा था, हमारी मैया ने सोने का कंगन पहना दिया, इससे बड़ा ताप लगता है इसलिए मैंने डुबा दिया इसके भीतर, अब तो यहां पर क्यों लग गया? तो बंदरों ने ऐसे लगा दिया, तरह तरह के नखरे करते हैं। एक दिन एक गोपी ने कहा अच्छा आज मैं इसको पकड़ करके यशोदा जी के मैया के पास ले जाऊं, इसलिए आज उसने एक तरकीब सोच करके सवेरे में कृष्ण को पकड़ लिया। उस समय कुछ अंधकार था, उन्हें अच्छा ठीक है, उसने अपने कृष्ण को गोदी में उठा लिया और उसके मुख को ढक करके और यशोदा मैया के यहां जाकर, तुम कहती है जो तुम्हारा लड़का चोरी नहीं करता, आज मैं पकड़ करके ले आए, देखो। यशोदा मैया आई तो उसने जब ये उठाया कपड़ा तो देखा जो उसी का बेटा जो मैया आई थी, अपने बेटे को ही ले, अजी अरे ये कैसे, मैं अपने बेटे को कैसे लाई? इतना में कृष्ण पलंग से ऊं करते हुए, जब ये मैया ये रोज ऐसे ही करती हैं और हमको चोर कहते हैं, हम चोर नहीं है, चोर यही है। ये लीला किस लिए? बाल्यावस्था से ऐसे ही लीला करते हैं जो गोपियां चाहती हैं हमारे घर में आए, हम उसका दर्शन करें। यदि कृष्ण को विलंब हो गया तो उसके भीड़ लग जाती है और वो कहते हैं कि यशोदा तू बड़ी दुर्भागा है, तुम्हारे घर में ये लीलाएं नहीं करता है, हम लोगों के घरों में करता है। यशोदा मैया ने सोचा ये दूसरों के घर में चोरी करता है, ये रोज आकर के हमसे अभियोग करती हैं, नालिश करती हैं, ये चोरी करता है। अच्छा अभी तो ठीक। इस प्रकार से वो यशोदा जी ने कहा शायद हमारे घर का मक्खन नौकर लोग करते हैं, नौकरानियां बनाती हैं मक्खन, मैं अपने हाथों से दूध निकालूंगी और उसे गर्म करके दही बनाऊंगी और अपने हाथों से मथूंगी और तब कृष्ण को मक्खन देंगे, देखे कैसे नहीं लेता है, मीठा होगा। अभी नौकरानियां जैसे तैसे बना देती हैं इसलिए वो मक्खन मीठा नहीं शायद होता होगा। इसलिए स्वयं आज सवेरे दीपावली के दिन उन्होंने सब गोपियों को अपने अपने घरों में भेज दिया, जितने गोप उनके घरों में नौकर थे उनको भी बाहर कर दिया, ये जाओ तुम लोग अपने घर में दिवाली करो, और अपने आप गायों का दूध निकाला, पद्मगंधा और बड़ी बड़ी सुगंधित गायें उनका दूध निकाला, आज उसको गर्म किया, दही बनाया और सवेरे भोर में 4 बजे बैठ गई दधी मंथन करने के लिए। नंदगांव में जाने में देखेंगे 5-10 मन दूध उसमें आ जाएगा, अभी एक बर्तन रखा है बहुत बड़ा, उसमें हम लोग भीतर जा सकते हैं, घुस जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा है। तो उसमें दधि मंथन कर रही है, कैसे मंथन, खंभे में रस्सी को लपेट करके और दधि मंथन को उसमें लपेट करके इस तरह से करती, आजकल वो स्त्रियों से पकड़ करके ऐसा खींचा ही नहीं जाएगा, उनको पहले ब्लड प्रेशर नहीं होता था, वो जानती नहीं थी जब ब्लड प्रेशर कैसे कहते हैं, पहले सील लोढ़ा से पीसना पड़ता, आज तो ऐसा कर दिया और चलने लगा मशीन और झट पिसाई, पहले गेहूं मशीन में नहीं पीसता था, पहले चक्की में पीसती थी, उनको कोई भी रोग नहीं होता था, पुरुष भी वैसे ही। इस तरह से यशोदा मैया बैठी, कितना सुंदर होंगी आप अनुमान कर सकते हैं, जिनका बेटा कृष्ण जगत में सबसे सुंदर है उसकी मैया कैसे सुंदर है, मैया ही नहीं सुंदर है तो बेटा क्या होगा, इसलिए मैया बड़ी सुंदर थी, कमर पतली बस्तक्षल चौड़ा, अत्यंत उसका कंठ बड़ा सुरीला, नहीं तो कृष्ण का आवाज कैसे सुरीली होती, कंठ भी बड़ा सुरीला, हाथों में कंगन की चूड़ियां पहनी है, सिल्केन वस्त्र पहनी है और उनकी अंगों का की शोभा सौंदर्य मानो झांक रहा है कपड़े इसके अंदर से, कितनी सुंदरी है। कोई स्त्री नंगी हो जाए वो उसको कोई तरफ एक बार देख करके नहीं देखे, जिनको कुछ घूंघट है कपड़े हैं उसका सौंदर्य निखरता है। आजकल तो सड़कों पर ऐसे देखिए नंगे धंगे ऐसे ऐसे सब निकलते हैं, पहले ऐसा नहीं था क्या। तो यशोदा मैया अपूर्व सुंदरी और वो मंथन कर रही हैं, मंथन करने से घर घर जो शब्द आता है दही का वो मानो मृदंग का या ढोलक का पिछला भाग, और करताल बज रहे हैं उनके चूड़ियां बज रही हैं, और उस समय में अत्यंत सुरेले रूप से सब कुछ भूल करके खैती हुई प्रकार से घर घर करती हुई गोविंद दामो धर्मा धवेती, गोविंद दामो धर्मा धवेती, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं, उसमें मैं ब्रज में सर्वत्र सब घरों घरों से ऐसे ही आवाज आती। अभी भी दधि मंथन करने के समय में अभी भी दधि मंथन इत्यादि लोग करती हैं गोपियां वहां नंदगांव में, बरसाना में, मथुरा इत्यादि से तो अब सब विदा हो चुका है, किंतु गांव में अभी वही सभ्यता है और वैसे ही सब कुछ चल रहा है। यहां पर इधर उधर में सब गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से वो गान कर रही हैं, गोविंद दामो धर्म ध्वेती, गोविंद दामो धर्म ध्वेती, गोविंद दामो धर्म ध्वेती, गोविंद दामो धर्म ध्वेती। भगवान का कीर्तन और भगवान दोनों अभिन्न हैं कलयुग में, विशेष करके हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल कलौ नास्तेव 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 गति। भगवान बैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में भी नहीं है, उनके भक्त लोग जहां कीर्तन करते हैं बड़े प्रेम से शुद्ध बुद्ध में, हृदय द्रवित हो रहा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरे, और ऐसे भक्त लोग जहां कीर्तन गए भगवान वहीं पर पहुंच जाते हैं और कहीं नहीं रहते, मंदिर भी छोड़ करके चले जाते हैं। वहां जगन्नाथपुरी का और मंदिरों का ऐसा इतिहास है, यदि कोई भगवान का कीर्तन बड़े अच्छी रूप से यदि करने लग गया तो कृष्ण मंदिर से निकल करके चले गए, वहां पर चले गए जहां पर कोई भक्त गान कर। इसलिए कृष्ण पलंग पर सोए हैं और जहां कीर्तन मैया ने आरंभ किया उनकी नींद खुल गई और देखा टटोला जी मैया कहाँ है, मैया कहाँ है, टटोलने लग गए। इधर में यशोदा मैया क्या कर रही, गोविंद दामो उठे, पलंग से उठ नहीं पा रहे, पलंग जरा ऊंचा है इसलिए वो धीरे धीरे पेट के बल किसी प्रकार से लपटते हुए इधर लपटते हुए और धीरे धीरे मैया की तरफ में आने लगे। किंतु मैया सुन रही है, धिक्तान धिक्तान, जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं उनको धिक्कार है, मानो मृदंग का पिछला ये बज रहा है धिक, और इधर से तान, उनको धिक्कार है जो भगवान का भजन नहीं कर, उनका जन्म वृथा ही चला गया, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए मधु लीला कर रहे हैं। इसका हम कंक्लूजन कैसे करेंगे देखेंगे। निकट में आ गए रोते रोते, उन्होंने एक अपना हाथ यहां पर रख दिया और एक हाथ से दधि मंथन के लिए जो चलावनी होती है उसको पकड़ लिया, जो संबंध है कृष्ण ने पकड़ लिया। इधर से लौट करके देखी कृष्ण को, उन्होंने बच्चे को आंख से आंसू आ गए, हृदय द्रवित हो गया और गोदी को बैठा करके कपड़े से ढक करके स्तन दे दिया। कृष्ण ललक ललक करके पी रहे हैं। भागवत ने कहा, नंद किम अकरोत ब्रह्मन श्रेयो एव महोदयम, यशोदा च महाभागा पपौ जस्यास्तनम हरि। ओ महाराज, नंद बाबा महासौभाग्यवान, उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया पूर्व जन्म में जो कृष्ण जैसे बेटे मिले और उनको गोदी में लेकर के चल रहे हैं। मैं तो वेदों को जो उपासनीय ब्रह्म है उनसे हमारा कोई तात्पर्य नहीं। महाभारत के जो युद्ध में लड़ने वाले सबको पराजित करने वाले कृष्ण हैं उनको भी मैं नहीं। अमि अनंदम बंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म भवंत भवभीता श्रुति में परे स्मृति में तरे भवंत भजंत भवभीता अमहनंदम बंदे जस्यालिंदे परम। मैं तो उसी नंद बाबा की आराधना करता हूं जिनके आंगन में ये पर ब्रह्मा नंग धड़ंग होकर के उनके आंगन में लोट पोट रहा है। ऐसा उन्होंने क्या किया था और यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, कौन सा दान किया था, तीर्थों में स्नान किया था ना, क्या किया था? मैं जानता तो वही करता जे कृष्ण उसके ललक ललक करके दूध पीते हैं और ये उन्हें डरा धमका रही है, कौन सा उन्होंने क्या किया? किसी कार्य से नहीं होता ये, आराधना से भी ऐसा नहीं होगा, नहीं तो और लोग कर लेते आराधना। ये तो स्वाभाविक रूप में उनकी मैया है, गोलोक बैकुंठ में भी वो उनकी मैया ही है और वो उनके पिता है, इसलिए किसी तपस्या के आचरण के द्वारा ये सौभाग्य नहीं होगा। हाँ, हरि कथाओं के माध्यम से ऐसा हो सकता है, सुनते सुनते भावना है हम जो यशोदा मैया जैसी होकर के कृष्ण को दूध पिलाएंगे तो कृष्ण, ऐसा हो सकता है। कृष्ण हमारे मोस्ट बिलवड हो, प्रियतम हो, ये भी ऐसे मंत्र सब हैं, गोपाल मंत्र और काम गायत्री इत्यादि, जिसके द्वारा ऐसा हो सकता है जो ब्रह्मा इत्यादि का जो नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कभी कृष्ण ने द्वारका में एक लीला की, जानबूझ करके बीमार हो गए, लोग पूछने लगे कैसे आप ठीक हो सकते हैं, किसी भी उन्नत भक्त प्रेमी भक्त का चरण धूलि लाओ मैं अपने शरीर में लगा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। नारद जी वहां पर थे, लोगों ने कहा नारद जी से आप तो बड़े प्रेमी भक्त हैं, आप अपने चरणी धूलि लेकर के इनको लगा दें जिससे ठीक हो जाए। अरे मैं नरक में जाऊंगा, ये हमारे परम आराध्य हैं, नहीं दिया। रुक्मिणी सत्यभामा से पूछा गया, उन्होंने भी नहीं दिया, क्यों? हमारे परम ये पति हैं, अपने चरण की धूलि भला लगाए, नहीं दिया। अब ब्रज में गई गोपियों ने जब सुना तो अपने अपने पैरों की धूलि झाड़ झाड़ कर सब गोपी जितनी थी ये कृष्ण जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए चरणों की धूलि झाड़, हमारे चरणों की धूलि से ये यदि ठीक हो जाते हैं। उसी को जब नारद जी ले गए तो कृष्ण को स्पर्श करते ही ठीक हो गए, उसको जहां पर वो धूलि रख दी गई उसी को गोपी तालाब कहते हैं, ये चंदन वहीं से आता है, वो गोपियों की धूलि जो झाड़ करके द्वारका में रख फेंक दिया उसी से वो तालाब जो ऐसा बना उसमें से ऐसे ही मिट्टी निकलती है पीली और उसी को हम लोग गोपियों की चरण की धूली है इसलिए लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते। तो गोपियों के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो यशोदा मैया दूध उनको पिलाने लगी, इतने में पास ही में रखा हुआ दूध चूल्ही पर रखा था वो गर्म हो करके ऊपर से उछलने लग गया, आग में वो उफन करके गिरने लगा। यशोदा मैया ने सोचा कि ये दूध दूध नहीं, ये तो कोई भक्त है। यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध है कि कोटि कोटि खीर समुद्र इसे बन सकते हैं और कृष्ण का पेट इतना है कि विश्व ब्रह्मांड भी उसके अंदर में घुस जाए लाखों करोड़ों तब भी नहीं वो भरेगा। तो कृष्ण की भूख कितनी बड़ी है और पेट कितना बड़ा है तो हजारों जन्मों तक पिएंगे तो भी यशोदा का दूध कम नहीं होगा, इनकी भूख भी नहीं जाएगी तो ये पिता रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे। इसलिए भक्त लोग बड़े दुखी रहते हैं। यशोदा मैया ने कहा जी हम अपना दूध पीछे पिलाएंगे क्योंकि हमारे दूध से इसकी रक्षा नहीं होगी, हमारे दूध से ये खीर नहीं होगा, मक्खन नहीं निकलेगा, उससे संदेश नहीं बनेंगे, मिठाइयां नहीं बनेंगी, बनेगा मैया के दूध से, तो कृष्ण कैसे रहेगा? इसको तो मक्खन चाहिए, इसको संदेश चाहिए, पेड़ा चाहिए, मथुरा का पेड़ा बहुत ही सुहाना होता है, मधुर होता है, वो 20-25 दिन तक वो नष्ट नहीं होता है, बहुत ही अलबेला होता है। ये सब चीजें कैसे होंगी? ये तब तो दूध से ही बनता है, तो गैया के दूध से ही होगा, इसलिए तुम मरो मत। गई और पानी के छींटे देकर के शांत किया, नहीं नहीं हम अभी नहीं खिलाएंगे, तुम ही को अभी बना करके तुमको खिलाएंगे। इतना करके लौट रही हैं तो देखा जैसे वो हमारा बेटा कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। वो इतना चंचल, उसको क्रोध हो गया। भगवान को क्रोध नहीं होता है, आप लोगों ने सुना है, बच्चे को क्रोध हो गया, दांत कड़मड़ाने लगा, सोचा जे ये इसको मैं गिरा दूं पात्र को, किंतु इतना बल कहां जे गिरा सके, किंतु बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, छोटा सा होने से भी सोचा जे ऊपर में तो मोटा होता है नीचे में पतला, एक पत्थर की लोड़ी ली और उसे ठक मारा, उसमें से छिद हो गया और वो दधी तरल होकर के बहने लगी और देख करके बड़ा आनंदित हुआ। किंतु जब याद आई, अरे मैया आएगी तो मुझे मारेगी, अपनी भगवत्ता सब भूल गए, यही उनकी लीला है, भगवत्ता भूल गए और वहां से भागे। चोर तो भागता है जब पुलिस हमको कभी ना पकड़े, बहुत पुलिस से भी अधिक बुद्धिमान होता है, अपना कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता है, तभी कुछ न कुछ छोड़ जाता है जिसके क्लू से वो पकड़ा जाता है। तो वो कृष्ण को याद नहीं रही, वो जहीं जहां पर दही बह रही थी बाराता उसे के ऊपर से चल करके घर में पहुंच गए। घर में पहुंचते ही देखा छीके पर मक्खन लटकाया हुआ है, बस बच्चे उनके सब आ गए, इधर कौआ भी आ गया, एक उखल उल्टाई हुई थी उसके ऊपर में चढ़ करके मक्खन लेकर के अपने खा रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, बंदरों को, कौओं को दे रहे हैं। बंदर कौन? जो लोग रामचंद्र जी की लीला में, जिन लोगों ने राम के लिए, सीता के लिए अपना जीवन दिया था, उनके लिए रावण से लड़े थे, उनके सेनाओं से, उस समय उनको कुछ नहीं दिया, अपने आप पत्ते इत्यादि खा करके फल लेकर के किसी प्रकार से किया था, राम ने उनकी खाने की कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए सोचे उस समय तो मैंने किया नहीं, हमारे लिए प्राण दिया, हमने क्या इनके लिए दिया, इसलिए अब इसको मक्खन इत्यादि जो कुछ मिलेगा सब खिलाएंगे। और दूसरे जो कौवे थे काश भूसुंडी के वंशज, काक भूसुंडी जी गरुड़ के भी गुरु हैं, देखने में कौवे हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ का भी मोह दूर किया था, इसलिए काक भूसुंडी के दल कौओं को भी वो दे रहे हैं। और इतने में मैया लौट करके आई, देखिए गया कहां, हंसने लगी, ओ हमसे चोरी करके भाग रहा है, सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, पैर के तो छाप पड़े हैं, पैर दौड़ करके जा करके घर में घुस रहे हैं, बस देखा जी घर के अंदर में ओखल के ऊपर में उदूखल, एक खल कृष्ण और एक उदूखल जिसने सहायता की, दोनों ही दंडनीय हैं। जो प्रेणिक प्रेरणा देता है जो चोरी करो, और जो चोरी करता है, दोनों ही दंडनीय हैं। इसलिए यशोदा मैया वहां पर एक पेंत लेकर के पहुंची और जब ही पकड़ने की चेष्टा की तभी वो भागा, दौड़ने लगी राजपथ पर। ये छोटा सा अभी बेटा चंचल और ये कुछ स्थूल शरीर की दौड़ी, तो तुम बड़ा चतुर बनता है, देख ये समझता है कि अभी सब गोकुल के लोग रास्ते पर होंगे, हमारी मैया घूंघट निकाल करके कैसे जाएगी, अभी तो ये सब लोग बाहर में गए हुए हैं काम पर, अभी राजमार्ग पर कोई है नहीं, चलो देखें कहां तक चलता है, पीछे से चले। उनका केश बंधन खुल गया, उसमें जो फूल थे वो पुष्प वो गिरने लगे। मानो कह रहे हैं जसोदा मैया हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, दौड़ो, कहां तक ये जाएगा। वो भी दौड़ने लग गई और कहते अरे देखो तो ऐसे उठाया एक पत्थर, ऐ मार कृष्ण, अरे मैया मुझे मत मार। क्यों नहीं मारूं, तुमने हड्डियां क्यों तोड़ी, मटकिया क्यों फोड़ी? मैंने मैंने नहीं फोड़ा, तो किसने फोड़ा? अरे मैया तुम जब हमको बिना किसी कारण से ही मारने के लिए चली, तो तुम्हारे पैर के जो इतने मोटे मोटे सोने के करड़े हैं वो लग करके फूट गया, मैंने मैंने थोड़े किया। चोर, अरे मैया हमारे वंश में नहीं तुम्हारे पिता के वंश में चोर होंगे, बड़ा ढीठ है। फिर खदेड़ा और उनको पीछे से पकड़ लिया। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमान जसोदा भियोलु खला धाम मानम परामृष्टम अत्यंत तुद्रुतो नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल रुदंतं मुहुर्नेत्र जुगमं मृजंतं परांभोज जुगमेन सातंकनेत्रं मुहुर्श्वासकंपा त्रिरेखां ककंठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवत्ता। नामामीश्वरं सचिदानंदरूपं लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमान। कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ करके पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कृष्ण रोने लगे, मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार। एक हाथ से उनको पकड़ लिया, बाएं हाथ से उनका दाहिना हाथ, और कृष्ण पीछे के तरफ में जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। और तू फिर करेगा ऐसा, पर ब्रह्म को नचा रही है, रुला रही है। देखो ये रुलाना क्या भक्ति है, ये रुला रही है तो भक्ति नहीं हुई, नहीं ये प्रेम की संबंध है। वहां पर सब कुछ प्रेम है। लोग कहते हैं कि वहां पर गोपियों में परस्पर चंद्रावली और राधिका में ईर्षा द्वेष कलह क्यों होता है? इस जगत में ये सब तामसिक वृत्तियां साधकों में भी नहीं होना चाहिए, और वहां पर ये सब चीजें ईर्षा द्वेष, हाँ वहां पर प्रेम का वो ईर्ष्या देश है, वो प्रेम ही है। एक चीनी का शेर बनाया गया, तो चीनी से खिलौना होता है ना शेर का, तो उसका सिर भी जितना मीठा होगा, पूंछ भी मीठी होगी, उसकी सींग भी नोकीली और मारने वाली नहीं होगी, क्योंकि चीनी का है ना। उसी तरह से वहां पर प्रेम का ईर्ष्या, वहां पर ये जगतिक निस्सार नहीं, वहां पर प्रेम से वो सब परस्पर वो प्रेम का वो लड़ाई होती है। जैसे कभी कभी इस जगत में पति और पत्नी में कभी भी बन ठन जाती है ना, वैसे ही वो लड़ाई झगड़ा नहीं है। यदि ना रहे तो जगत में ये सब चीजें चलेंगी नहीं, प्रेम का रिन्यूअल होता है। इसी तरह से कृष्ण का प्रेम का रिन्यूअल करने के लिए ऐसा, तो इस तरह से जसोदा मैया ने उनको पकड़ लिया और कृष्ण रो रहे हैं, मैया मुझे मत पकड़, लठिया तो छोड़ दी, तुम्हें बांध करके रखू किससे, उदुखल से, वो खल ने तुम्हारी सहायता की, उस पर चढ़ करके तुमने किया, इसलिए तुमको बांध करके रखूंगी। जितना रस्सी मंगा करके थी सब लगाया बांधने के लिए, गोकुल भर की गैयों की सब रस्सी आ गई, दो अंगुल की उसकी कमर नहीं बधी, रस्सी लंबी होती गई, मिलो मिलो लंबी हो गई, कृष्ण बंधा नहीं। जिसके लाट में बंधन नहीं है कहां बंधेगा, कौन बांधेगा? गोपियां ताली बजा करके जसोदा मैया को कहने लगी, यार इसके ललाट में बंधन नहीं है, कैसे बांध लेगी? सवेरे से शाम तक 10 जन्म तक बांधने पर भी नहीं बांध, जिसका अंतर नहीं है, बाहर नहीं, उसको कौन बांध सकता है? नहीं बांध सकी। आज यही तक रखें, कल जसोदा मैया के हाथ उसे छुड़ाकर और आगे की सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हैं दो चार, कल तक वर्णन करने का समय है, कल तक करूंगा, फिर इसके बाद में कभी आऊंगा तो पीछे देखूंगा। इन लीलाओं का श्रवण करने का महत्व क्या है? भव बंधन खुल जाएगा। एक बार भी कृष्ण नाम सहित इन मधुर लीलाओं को सुना, भव का सारा जितना बंधन है सब खुल जाएगा, भगवान का प्रेम होगा और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर। गौ प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
Thus ends the class on the 1st of February 2002 in the evening in Auckland. Hare Krishna.